यहोशू अध्याय 17। आइए हम यहोशू का अध्ययन करते हुए अगले चरण में प्रवेश करें और अध्याय 17 खोलें। अध्याय 17 में भी यहोशू प्रतिज्ञा के देश का बंटवारा कर रहा है। मनुष्य के गोत्र के आधे लोग अभी बचे थे जिनको अपने उत्तराधिकार की भूमि प्राप्त होनी थी। मनुष्य के आधे गोत्र ने तो यर्दन पार कर अपना भाग ले लिया था। अब दूसरे भाग को पश्चिमी तट पर बसाना था, जो आज भी इसराइल देश की पश्चिमी तटीय प्रदेश है। पद 12 में हम फिर देखते हैं कि इसराइल के वंशज उस देश से बैरियों को पूरी तरह समाप्त करने से चूक गए हैं। परंतु मनुष्योई उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बरियाई से बसे ही रहे। तो भी जब इसराइली सामर्थी हो गए तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर न किया। यहोशू 17:12-13 पद। इसका अर्थ हुआ कि इसराइल के वंशजों ने प्रतिज्ञा के प्रदेश पर पूरा अधिकार नहीं किया। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसराइल के वंशजों का संपूर्ण अनुभव मिस्र के दासत्व से मुक्ति पाना, जंगल को पार करना, प्रतिज्ञा के देश में आना आदि एक आत्मिक रूपक है जो हम मसीहों के जीवन को दर्शाता है। ये परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को नया रूप प्रदान करता है। परमेश्वर ने हमें संसारिक जीवन पर विजय प्रदान की है, जिससे हम आत्मा के जीवन में आचरण करते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक जन इस विजय का अनुभव करें। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम अपने अपने जीवन के उस प्रत्येक क्षेत्र पर परिपूर्ण विजय प्राप्त करें जिस पर बैरी ने हमारे जीवन में प्रभुता बना रखी है। यदि हम बैरी को इनमें से एक भी क्षेत्र में रहने के लिए वास करने देंगे तो ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए एक हमेशा की समस्या बन जाएगा। हमारे जीवन में हमारा उग्र स्वभाव, क्रोध, घमंड आदि अनेक ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पर हमें विजय पानी होती है। उसने आपको वो सब दे दिया है जिसकी आपको आवश्यकता है। परमेश्वर आपको जीवन के इन समस्त क्षेत्रों पर विजय दिलाना चाहता है, परंतु कई बार जिस प्रकार इसराइल के वंशज बैरियों का नाश करने से चूक गए थे और अंततः हानि उठाई, उसी प्रकार हम भी संपूर्ण विजय में चूक गए और हमने मसीह के नाम में जय का दावा नहीं किया है। यही वे क्षेत्र है जिन पर भविष्य में शैतान आक्रमण करेगा। हम प्रायः पराजित किए जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरी तरह से ग्रहण नहीं किया कि संपूर्ण विजय प्राप्त करें जो आत्मिक जीवन के द्वारा हमें प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं बैरियों का संपूर्ण विनाश न करने की और देश पर पूरा अधिकार न करने की चूक सदा ही उनके लिए हानि का कारण रही। हम भी इस उदाहरण से सतर्क हो जाएं और आत्मा के जीवन में गहराई से जड़ पकड़े तथा परिपूर्णता प्राप्त करें। एक बार जर्मनी से आए हुए 60 पासवानों के साथ बात करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो कुछ करना चाहता है मैं उसके प्रति अपने मन के द्वारों को बंद करना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी धारणाओं और थियोलॉजी और प्रशिक्षण के कारण उन द्वारों को बंद करने की इच्छा नहीं रखता। परमेश्वर जो चाहे सो मेरे जीवन में करे। इसका प्रमुख कारण है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की छोटी सी छोटी सहायता भी ग्रहण करना चाहता हूं। मैं किसी भी बात में चूकना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं जब परमेश्वर के सामने आता हूं तब अपने आप को पूरी तरह खोल देता हूं और कहता हूं, हे प्रभु, मेरे लिए जो भी काम है मुझे दे दे, मैं उसकी कामना करता हूं, मुझे उसी की आवश्यकता है। मुझे उन लोगों पर दया आती है जो परमेश्वर को बांध देते हैं। वे कहते हैं, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। वे परमेश्वर को सीमाओं में बांध देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद परमेश्वर कोई ऐसी आशीष दे दे जिससे मुझे लाभ ना हो। मैं तो कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा जो कुछ करना चाहता है उसको बाधित करूं, क्योंकि उसके समक्ष परिवर्तन हेतु खुले रहने से ही मैं परमेश्वर द्वारा आरक्षित प्रत्येक विजय का श्रेय प्राप्त करूंगा। मैं उसकी एक एक प्रतिज्ञा को अपने अधिकार में लेना चाहता हूं। मैं पूरे प्रदेश पर अधिकार करना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों में कमी क्यों आने दूं? परमेश्वर मुझसे बढ़ते रहने को कहता है तो मैं क्यों रुक जाऊं? मैं अपने जीवन में एक भी ऐसा क्षेत्र क्यों रहने दूं जो पवित्र आत्मा की प्रभुता और नियंत्रण में ना हो? मैं अपनी देह की दुर्बलता से समझौता क्यों कर लूं? मैं तो अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मसीह यीशु की विजय का अनुभव करना चाहता हूं। मैं तब तक आगे बढ़ता रहूंगा जब तक कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार मैं मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ जीत ना लूं। परमेश्वर ने जहां तक रेखा खींच दी है मैं उससे जरा भी पीछे रुकना नहीं चाहता हूं। इसराइल ने यही भूल की थी, उन्होंने बैरी का सफाया नहीं किया। जब वे बलवंत हो फिर खड़े हुए तब भी उन्होंने उन्हें नाश न करके केवल दास बनाया। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। यूसुफ की संतान यहोशु से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है, फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोशु 17:14। एफ्रेम और मनशे बड़े गोत्र में से दो गोत्र थे। वे यूसुफ के पुत्रों के वंशज थे। जब बाइबल में कहा जाता है यूसुफ का गोत्र, तो उनका अभिप्राय एफ्रेम और मनशे से होता है, क्योंकि उनके परिवार बहुत अधिक थे। इसलिए जब इन दोनों गोत्रों के नाम एक ही पर्ची डाली गई तब उन्होंने शिकायत की, तुमने हमारे नाम एक ही पर्ची क्यों डाली? हम संख्या में बहुत अधिक हैं, इसलिए हमारे नाम दो पर्चियां अलग अलग होनी चाहिए। उन्होंने उस क्षेत्र का नक्शा बनाकर उसका विभाजन किया और तब उसके हिसाब से अलग अलग गोत्रों के नाम पर्चियां डाली थी। इन दोनों गोत्रों के नाम एक ही पर्ची होने के कारण उन्हें ये शिकायत थी। उनका कहना ये था कि पर्ची यूसुफ के नाम डालना तो उचित है, परंतु यूसुफ के दो पुत्र थे जिनके नाम से दो गोत्र चले, इसलिए पर्चियां भी दो डाली जाए, क्योंकि ये दोनों गोत्र संख्या में बहुत अधिक थे। यहोशू को उनकी बात उचित लगी, इसलिए उसने उनके नाम दो अलग अलग चिट्ठियां डाली और इस प्रकार मनशे और एफ्रेम एक को यर्दन की पश्चिमी तट पर एक साथ वास करने लगे, परंतु मनशे का एक भाग यर्दन नदी के पूर्वी तट पर भी वास कर रहा था।